नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर आज फिर चर्चा शुरू होगी। पश्चिम एशिया संघर्ष के दूसरे सप्ताह में पहुंचने के बीच होर्मोज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही ठप। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से बातचीत की। और FIH महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के पूल बी के अंतिम मैच में आज शाम हैदराबाद में भारत का सामना वेल्स से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। वे आज दोपहर केरल के एर्नाकुलम में लगभग 10,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी का इस दौरान एक सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोची रिफाइनरी में 5,500 करोड़ रुपए के निवेश वाली पॉलीप्रो पाइपलाइन इकाई की आधारशिला रखेंगे। 400 किलो टन की वार्षिक क्षमता वाली ये इकाई देश की घरेलू पॉलीमर उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री मोदी थलपड़ी और चेंगला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के 6 लेन के विस्तार और कोझिकोड बाईपास का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित 3 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों और 23 ग्रामीण सड़कों तथा शोरनूल निलंबूर रोड रेलवे खंड के विद्युतीकरण सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी केरल के पलक्कड़ और तमिलनाडु के पोलाची के बीच शुरू होने वाली नई रेल सेवा को भी झंडी दिखाएंगे। कोची से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अवसंरचना, ग्रामीण संपर्क और राजमार्ग विकास सहित प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 नई रेल सेवाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
कार्यक्रम के दौरान जिन 5 ट्रेन की सेवाएं शुरू हो रही हैं, उनमें 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, 2 एक्सप्रेस ट्रेन और 1 पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। नागरकोइल चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई जिलों से गुजरते हुए दक्षिणी तमिलनाडु और तेलंगाना के बीच संपर्क को बेहतर बनाएगी। वहीं पोदनूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत के खनिज और औद्योगिक बेल्ट के बीच रेल लिंक को मजबूत करेगी। इसके अलावा अन्य 3 ट्रेन हैं, रामेश्वरम मंगलुरु एक्सप्रेस, तिरुनेलवेली मंगलुरु एक्सप्रेस और मयिलादुथुरई थिरुवारूर कराईकुट्टी पैसेंजर ट्रेन। इन ट्रेन के शुरू होने से न केवल रेल संपर्क में विस्तार होगा बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, कोयम्बटूर।
लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा फिर से शुरू होगी। कल सदन में कांग्रेस सांसद डॉ मोहम्मद जावेद ने ये प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री बिरला ने विपक्ष के नेता और अन्य विपक्षी नेताओं को सदन में अपने विचार रखने से रोका और विपक्षी महिला सांसदों पर निराधार आरोप लगाए। श्री जावेद ने यह भी आरोप लगाया कि अध्यक्ष सदन में निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहे। प्रस्ताव का विरोध करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन का संचालन निष्पक्ष तरीके से किया। शिवसेना के डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान ने प्रस्ताव का विरोध किया और सदन को बाधित करने के लिए विपक्ष की आलोचना। इससे पहले कांग्रेस के गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण देते समय सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अध्यक्ष ने बार बार बाधित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष के दूसरे सप्ताह में पहुंचने के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही ठप हो गई है। इस मार्ग पर पोत परिवहन में 80% से अधिक कमी आई है। लगभग 150 टैंकर जल डमरू मध्य के बाहर खुले समुद्र में लंगर डाले खड़े हैं, जिनमें अनुमानित तौर पर 16 अरब लीटर तेल भरा हुआ है। जल डमरू मध्य के निकट 10 वाणिज्यिक जहाजों पर गोले या ड्रोन से हमले की खबरें हैं। फारस की खाड़ी में व्यापक GPS जैमिंग से खतरा और बढ़ गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हालात को देखते हुए फ्रांस ने यूरोपीय नौसैनिक पहल की है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस जलमार्ग पर वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए गठबंधन बनाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति मैक्रों ने अभियान को रक्षात्मक बताते हुए इसे यूरोपीय नेतृत्व वाले समुद्री सुरक्षा मिशन एजिनोर का आपातकालीन विस्तार बताया है। फ्रांस ने इसके लिए अपने प्रमुख विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल को तैनात किया है। ग्रीस, साइप्रस और नीदरलैंड ने गठबंधन में भागीदारी की पुष्टि की है। यूरोपीय देशों ने इस पहल को अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से अलग रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनुरक्षण अभियानों की घोषणा की है और समुद्री व्यापार के लिए राजनीतिक जोखिम बीमा की पेशकश की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मोज जल डमरू मध्य में ईरानी कार्रवाई के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के बारूदी सुरंग बिछाने वाले 10 जहाजों को नष्ट कर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के ताजा घटनाक्रमों पर विस्तृत चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम संपर्क में रहने पर सहमत हुए हैं। पिछले महीने ईरान और अमेरिका इसराइल की संयुक्त सेनाओं के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से ये उनकी तीसरी टेलीफोन वार्ता थी। डॉक्टर जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से भी पश्चिम एशिया की स्थिति पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि श्री चो ह्यून के साथ उनकी बातचीत काफी अच्छी रही। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों तथा भारत और इस क्षेत्र के बीच हवाई यात्रा पर इसके प्रभावों की बारीकी से निगरानी कर रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यात्री सुरक्षा और सेवाओं की निरंतरता सर्वोपरि मानते हुए विमानन कंपनियां बदलती स्थिति के अनुरूप उचित परिचालन व्यवस्था कर रही हैं। एक रिपोर्ट।
मंत्रालय ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय अतिरिक्त आगमन और प्रस्थान स्लॉट उपलब्ध कराने और मस्कट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वैकल्पिक हवाई अड्डे के तौर पर उपयोग करने की अनुमति देने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। यह व्यवस्था दुबई, अबुधाबी, शारजाह, रस अल खैमा, अल ऐन, फुजैरा, जद्दा और मदीना सहित विभिन्न गंतव्यों से आने जाने वाली उड़ानों पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि एयरलाइनों की परिचालन योजनाओं से संकेत मिलता है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस कल से रियाद के लिए उड़ान संचालित करेंगे, जबकि इंडिगो मुंबई रियाद मुंबई सेवा शुरू करेगी। अकासा एयर को कल से शुरू होने वाली मुंबई रियाद मुंबई सेवा की योजनाबद्ध शुरुआत मौजूदा परिचालन स्थितियों के अनुरूप करने की सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने संयुक्त रूप से गोवा तट के पास P-8I विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 के 4 सफल इन फ्लाइट रिलीज परीक्षण किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परीक्षण इस वर्ष 21 फरवरी से 1 मार्च के बीच किए गए।
इस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर को 150 किलोग्राम पेलोड पहुंचाने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। ये तट से दूर खुले समुद्र में तैनात संकटग्रस्त नौसैनिक जहाजों को महत्वपूर्ण भंडार, उपकरण और चिकित्सा सहायता प्रदान करने में नौसेना की परिचालन रसद क्षमताओं को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए P-8I विमान के लिए ADC-150 प्रणाली को कम समय में विकसित और प्रमाणित किया गया। सभी विकासात्मक उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। इस प्रणाली को जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं राजेश मीणा।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 300 अरब अमरीकी डॉलर की ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की है। इसके तहत अमरीका में 50 वर्षों में पहली नई बड़ी तेल रिफाइनरी अमरीका फर्स्ट रिफाइनिंग खोली जाएगी। ये रणनीतिक कदम ऊर्जा क्षेत्र में प्रभुत्व हासिल करने के लिए करों को कम करने और परमिट प्रक्रिया को सरल बनाने के उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का अनुसरण करता है। भारत ने श्रीलंका को सहयोग देने की प्रतिबद्धता जारी रखते हुए चक्रवाती तूफान दित्वा के बाद मानवीय सहायता के रूप में पोर्टेबल और पूर्व निर्मित बेली ब्रिज स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। भारतीय सेना की इंजीनियर कोर ने श्रीलंका के थोडुवावा में 240 फुट लंबे बेली पुल लगाने का काम शुरू किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
FIH महिला हॉकी विश्व कप के क्वालिफायर में भारतीय टीम आज हैदराबाद में पूल बी के अपने अंतिम मैच में वेल्स से खेलेगी। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत फिलहाल 4 अंकों और मजबूत गोल अंतर के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत आज पुरुष सिंगल्स में भारत की तरफ से चुनौती पेश करेंगे। प्रणॉय का मुकाबला जापान के कोकी वातानाबे से, वहीं श्रीकांत का सामना हांगकांग के जेसन गुनावन से होगा। किरण जॉर्ज का सामना सिंगापुर के लोहो कीन यू से, जबकि आयुष सेट्टी का मुकाबला कनाडा के ब्रायन यांग से होगा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने टूर्नामेंट से आधिकारिक तौर पर अपना नाम वापस ले लिया है, इसीलिए वे ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में भी भाग नहीं ले पाएंगी। अन्य महिला खिलाड़ियों में उन्नति हुडा का मुकाबला आज रात चीनी ताइपे की चियू पिन चियान से होगा। वहीं मालविका बंसोड़ कल थाईलैंड की पोर्णपावी चोंचोवोंग के साथ अपना पहला मैच खेलेंगी। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के लिए 131 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। ये पुरस्कार सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली विजेता टीम के 15 खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और अन्य सहायक कर्मचारियों के बीच वितरित किया जाएगा।
मौसम विभाग ने आज गुजरात में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कोंकण, गोवा, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
शुक्रिया फरहत। भारत में अमरीका ईरान जंग का असर दिखने का समाचार आज तकरीबन सभी अखबारों में छाया हुआ है। दैनिक भास्कर लिखता है एलपीजी आपूर्ति 30% घटी, एयर इंडिया टिकट 399 रुपये महंगा, जबकि हिंदुस्तान के शब्द हैं रसोई गैस के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू। सरकार बोली सीएनजी और पीएनजी की कमी नहीं, लेकिन उद्योगों को आपूर्ति में होगी कटौती। हॉर्मुज स्ट्रीट को लेकर ईरान की चेतावनी, यूएस नेवी ने तेल टैंकर को किया एस्कॉर्ट, ये राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है इसराइल का ईरानी परमाणु लैब पर हमला, ईरान ने इजरायली रिफाइनरी उड़ाई। मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका जवाब है समान नागरिक संहिता, ये दैनिक जागरण की सुर्खी है। जनसत्ता ने इसी खबर को अपनी सुर्खी बनाया है, शरिया के प्रावधानों की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा समान नागरिक संहिता का समय। ग्रीन बजट से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर, दिल्ली में ग्रीन बजट की तैयारी, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाएगी सरकार, ये अमर उजाला की सुर्खी है। 100 से अधिक प्रजातियों के 40 लाख ट्यूलिप्स का लोग कर सकेंगे दीदार, श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 16 मार्च को पर्यटकों के लिए खुल जाएगा, ये देशबंधु की खबर है। रील के चस्के और जंक फूड ने बिगाड़ी सेहत, गांवों में घर घर पहुंचा मोटापा और बीपी, ये दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। जबकि हिंदुस्तान ने गर्मी के आगमन और घरों से लेकर दफ्तरों तक एसी की शुरुआत पर एक लेख प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है बाहरी दुनिया को झुलसा रहे वातानुकूलित उपकरण, ये विषय दर्शाता है कि जिसे दशकों पहले विलासिता का प्रतीक माना जाता था आज वो भारतीय जीवन शैली का हिस्सा हो गया है।
धन्यवाद मुनीश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर आज फिर चर्चा शुरू होगी। पश्चिम एशिया संघर्ष के दूसरे सप्ताह में पहुंचने के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही ठप। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से बातचीत की। और FIH महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के पूल बी के अंतिम मैच में आज शाम हैदराबाद में भारत का सामना वेल्स से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।